रजनीश कुमार यादव, बीए पार्ट 3 ऑनर्स हिंदी कला संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आवाज़ में। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के द्वारा रचित कविताओं की व्याख्या एवं उसकी विशेषताओं को सुनेंगे। इनकी कविताएं निर्जा में संकलित की गई हैं, जिसमें कि पहली कविता का शीर्षक है प्रिय इन नयनों का अश्रुनीर। प्रिय इन नयनों का अश्रुनीर, दुख से आविल, सुख से पंकिल, बुदबुद से स्वप्नों से फेनिल, बहता है युग युग अधीर, जीवन पथ का दुर्गमतम दल, अपनी गति से कर सजल सरल, शीतल करता युग त्रिशतीर, इसमें उपजा यह नीरज शीत, कोमल कोमल लज्जित, मिलित सौरभ सी लेकर मधुर पीर, इसमें न पंख का चिन्ह शेष, इसमें न ठहरता सलील लेश, इसको न जगाती मधुप भोर, तेरे करुणा करण से विलसित, हो तेरी चितवन में विकसित, छू तेरी श्वासों का समीर। प्रस्तुत गीत श्रीमती महादेवी वर्मा की निर्जा काव्यकृति का सर्वप्रथम गीत है और इसमें उन्होंने प्रिय के प्रति अपनी विरह उक्तियों को मर्म स्पर्शी ढंग से प्रकट किया है। कवित्री अपने प्रिय को संबोधित कर कहती हैं कि हे प्रिय, जब से मैं तुम्हारे वियोग में मग्न हूँ, तभी से मेरे नेत्रों से लगातार अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और अश्रुओं में सुख का कीचड़ भी मिला है तथा बुलबुले के समान क्षणिक स्वप्नों की आग भरी हुई है। कवित्री का यह कहना है कि यह मेरी दशा अनेक युगों से इसी प्रकार है और न जाने कब से मेरे अश्रु नेत्रों में से बह रहे हैं। इस प्रकार कवित्री अपने को अनादिकाल से वियोगिनी मानती है। कवित्री कह रही है कि मेरे आंसुओं का यह जल जीवन के भयंकर मार्ग को सजल व सरल बनाता हुआ दोनों प्यासे किनारों को तृप्त करता प्रवाहित हो रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि आंसू न होते तो जीवन भार हो जाता, क्योंकि अश्रु ही तो मुझ दुखिया का सहारा है। कवित्री के कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार नदी अनेक दुष्टर मार्गों से प्रवाहित होती हुई अपने किनारों को निरंतर सजल बनाए रखती है, उसी प्रकार करुणा भाव भी मानव जीवन में विशिष्ट शांति का संचार करता है। इन पंक्तियों में करुण भावना का मानव जीवन में महत्व प्रतिपादित किया गया है। प्रस्तुत अवतरण में स्वप्नों को समता बुद्ध से होने में उपमा, युग युग में पुनरुक्ति, जीवन में पथ और युग में त्रिशित तीर का आरोप होने से रूपक तथा सजल सरल में अनुप्रास आदि अलंकारों की योजना हुई है। कवित्री का कहना है कि मेरे अश्रुओं से ही प्रेम का श्वेत व कोमल कमल उत्पन्न हुआ है और उस प्रेम में लज्जा भी है जो कमल को संपुष्टित बनाए रखती है तथा उसमें पीड़ा की मधुर सुगंध भी विद्यमान है। कवित्री ने यहाँ करुणा सभी रूपी जलों में हृदय रूपी श्वेत कमल का स्वतंत्र विकास मानते हुए यह स्पष्ट करना चाहा है कि जिस प्रकार कमल में मधुर सुगंध रहती है, उसी प्रकार हृदय में वेदना भी है। कवित्री कह रही है कि इस कमल में कीचड़ का साधारण सा चिन्ह भी दृष्टिगोचर नहीं होता और उसमें जल का कोई कण भी नहीं ठहरता तथा भ्रमरों का समूह भी उसके पास नहीं जाता। इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने हृदय कमल के सात्विक स्वरूप को मानते हुए उसे अलौकिक से असंपृक्त कहा है। कवित्री अपने हृदय कमल की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरा यह दृश्य कमल तुम्हारी आराध्य की करुणा के जल बिंदुओं से ही सुशोभित हो सकता है और इसका विकास भी केवल तुम्हारी आराध्य की स्नेहपूर्ण दृष्टि के सहयोग से संभव है। अर्थात यह हृदय कमल आराध्य की श्वास रूपी मधुर वायु का स्पर्श पाकर ही अधिक सुंदरता से विकसित हो सकेगा। इन पंक्तियों में कवित्री ने सुमधुर शब्दावली में हृदय कमल का परिचय देते हुए उसे निरंतर प्रिय के संपर्क में ही रखने की अभिलाषा व्यक्त की है। यहाँ कोमल कमल में पुनरक्ति प्रकाश, मधुर पीर में विरोधाभास, श्वासों के समीर में रूपक, कणकण में और प्रास और रूपक नामक अलंकारों की योजना हुई है। निर्जा के इस प्रथम गीत में कवित्री के हृदय की वेदना का साकार चित्रण हुआ है, साथ ही आत्मा को कमल के रूप में ग्रहण कर रूपक अलंकार की सहायता से जीवात्मा की स्थिति व स्वरूप का उल्लेख करते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि परमात्मा में सहयोग होने पर ही आत्मा को चिर शांति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार महादेवी जी ने आत्म परमात्मा के अनेक संबंधों की स्थापना करते हुए ईश्वरीय प्रभाव की व्यापकता में आस्था प्रकट की है, साथ ही कला तत्व की दृष्टि से भी यह गीत पूर्ण सफल है और इसमें कोमल मधुर व चित्रात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो सुमित्रा नंदन पंत भी एक स्थल पर मानसिक वेदना का सुंदर चित्रण करते हुए कहा है, हाय किसके उर में उतारूं अपने उर का भार, किसे अब दूं उपहार, गूंथ यह अश्रुकणों का हार, मेरा पावस ऋतु सा जीवन, मानस सा उमड़ा अपार मन, गहरे धुधले धुले सांवले, मेघों से भरे मेरे नयन। आप रजनीश कुमार यादव के आवाज में महादेवी वर्मा के दूसरी कविता की शीर्षक की व्याख्या एवं विशेषताओं को सुनिए। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, तारकमय नव बेड़ी बंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन, रश्मि बलय शीत घन अवकुंठन, मुक्ताहल अभिराम बिछा दे, चितवन से अपनी पुलकती आ बसंत रजनी। मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अलिगुंजित पद्मों की किंकड़ी, भर पद गति में अलस तरंगड़ी, तरल रजत की धार बहा दे, मृदु स्मित से सजनी, बिहसती आ बसंत रजनी। पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मलया नील का चल दुकुल अली, घीर छाया सी श्याम विश्व को आ अभिसार बनी, सकुचती आ बसंत रजनी, सिहर सिहर उठता सरिता उर, खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, मचल मचल आते पल पर फिर, सुन प्रिय की पदचाप हो गई, पुलकित यह अमनी, सिहरती आ बसंत रजनी। निर्जा की इस द्वितीय कविता में श्रीमती महादेवी वर्मा ने बसंत ऋतु की रात्रि की प्राकृतिक सुषमा का सुंदर एवं स्वाभाविक चित्रण किया है। कवित्री बसंतकालीन रात्रि की अभिसारिका नायिका के रूप में कल्पना करते हुए कह रही हैं कि हे बसंत की रात्रि, तुम आकाश से धरती पर धीरे धीरे उतरती हुई आओ। कवित्री बसंतकालीन रात्रि की सुषमा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि तुम्हारी वेड़ी में तारों के मोती जड़े हैं, चंद्रमा का अनुपम शीश फूल तुम्हें सुशोभित कर रहा है, किरणों की चूड़ियाँ तुमने धारण कर रखी है और साथ ही शुभ्र मेघों का वस्त्र धारण किया है। अतः तुमसे मेरा अनुरोध है कि तुम अपने नेत्रों से ओस के सुंदर मोती बिखेरती हुई सबको पुलकित करती हुई आओ। कवित्री बसंत रजनी को संबोधित कहती है कि पत्तों की मरमर ध्वनि ही तुम्हारे नुपुरों की मधुर ध्वनि है और तुमने भ्रमरों से गुंजित कमलों की किंकड़ी धारण कर रखी है, अतः मंद मन बहती हुई सरिता की मंद चाल अपने पैरों में धारण कर हे बसंत रजनी, तुम अपनी मधुर मुस्कान से पिघलती हुई चांदी के समान चांदनी बिखेरती हुई और खिलखिलाती हुई आओ। इन पंक्तियों में बसंतकालीन रात्रि का चित्रात्मक वर्णन किया गया है और पढ़ने में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम किसी चित्र का अनुशीलन कर रहे हों। कवित्री कह रही है कि हे बसंत की रात्रि, पुलकित कर देने वाले स्वप्न ही तुम्हारी रोमावली है और तुम हाथों में मधुर स्मृतियों को लिए हुए मलय पवन के चंचल दुपट्टे को धारण कर नीली छाया के समान फैलती हुई संसार में अभिसार के लिए सुसज्जित होकर आओ। कवित्री प्रभातकालीन सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहती है कि नदी के हृदय में लहरों की सिहरन होने लगी है और मकरंद पूर्ण पुष्प खिल रहे हैं तथा न केवल प्रत्येक क्षण आनंद विभोर हैं अपितु धरती भी प्रिय के आगमन की आहट सुनकर पुलकित हो उठती है अतः हे बसंत रजनी तुम सिहरती हुई आओ। इन पंक्तियों में मानवीयकरण की सहायता से बसंत रजनी को अभिसारिका नायिका का रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है और लक्षणता व विशेषण विपर्य आदि का भी उचित निर्वाह हुआ है। श्रीमती महादेवी वर्मा का यह गीत छायावादी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है और कोमल मधुर व चित्रात्मक शब्दों के प्रयोग पर विशेष ध्यान देने से उसकी प्रभावता में वृद्धि हुई है तथा वह प्रभावशाली भी जान पड़ती है। वस्तुतः महादेवी जी ने बसंत रजनी की अभिसारिका नायिका के रूप में कल्पना करते हुए उसे प्रकृति के विविध आवर आचरणों से सुसज्जित भी किया है। अतः इस गीत में बसंत वैभव का उपयुक्त परिचय प्राप्त हो जाता है और प्रकृति चित्रण की मानवीकरण प्रणाली के भी दर्शन होते हैं। रजनीश कुमार यादव के आवाज में महादेवी वर्मा की कविता के अगले शीर्षक जो तीसरा है पुलक पुलक उर सिहर सिहर तन की व्याख्या एवं विशेषताओं को सुनिए। पुलक पुलक उर सिहर सिहर तन आज नयन आते क्यों भर भर सकुच सलज खिलती सिफाली अलस मौल श्री डाली डाली बुनते नव प्रवाल कुंजों में रजत श्याम तारों से जाली शिथिल मधुपवन गिन गिन मधुकण हर सिंगार झरते हैं झर झर आज नयन आते क्यों भर भर पीक की मधुमय बंसी बोली नाच उठी सुन अलनी भोली अरुण सजल पाटल बरसाता तम पर मृदु पराग की रोली मृदुल अंक धर दर्पण सासर आज रही निशी दृग इंदीवर आज नयन आते क्यों भर भर आंसू बन बन तारक आते सुमन हृदय में सेज बिछाते कंपित वानीरों के वन भी रह रह कर करुण विहाग सुनाते निद्रा उन्मन कर कर विचरण लौट रही सपने संचित कर आज नयन आते क्यों भर भर जीवन जलकण से निर्मित सा चाह इंद्रधनु से चित्रित सा सजल मेघ सा धूमिल है जग चीर नूतन सकरुण पुलकित सा तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरी पलकों में पग धर धर आज नयन आते क्यों भर भर। प्रस्तुत तीसरी कविता में महादेवी वर्मा ने विरह में अपनी मानसिक विह्वलता का वर्णन करते हुए मिलने की इच्छा को मधुर रूप में प्रस्तुत किया है। कवयित्री कह रही है कि आज मेरा हृदय पुलकित क्यों हो रहा है और सारा शरीर क्यों सिहर रहा है तथा आंखों में अश्रु क्यों छलक उठते हैं। कवयित्री का कहना है कि शेफाली लज्जित होती सी और संकोच करती सी विकसित हो रही है तथा मौलश्री की प्रत्येक डाली अलसाई हुई है और कुंजों में प्रवाल सफेद व काले तारों की जाली बुन रहे हैं। कवयित्री के कथानुसार कुंजों में जो चंद्रमा की किरणें हैं वह सफ़ेद तार हैं और जो अंधकार बिखरा हुआ है वह काले तार हैं तथा धरती पर प्रकाश व छाया की जाल से बुनी हुई दृष्टिगोचर होती है। कवयित्री कहती है बसंत का पन मंद मंद प्रभावित हो रहा है और हर श्रृंगार के फूल ओष बिंदियों को बिखेरते हुए झर रहे हैं। कवयित्री कह रही हैं कि कोयल की बांसुरी रसीली ध्वनि सुनाई दे रही है और सरल हृदय भ्रमरी नाच रही है तथा स्निग्ध व लाल पाटल अंधकार पर सुगंध की कोमल केसर बिखेर रहा है। कवयित्री का कहना है कि रात्रि ने सरोवर रूपी दर्पण को अपने कोमल अंक में धारण कर लिया है और वह उसमें अपने मुख का प्रतिबिंब देखते हुए अपने कोमल कमल पुष्प के समान नेत्रों में अंजन लगा रही हैं। कवयित्री ने यहाँ एक और तो यह संकेत करना चाहा है कि प्रकृति के इस मादक वातावरण में प्रिय को अवश्य आना चाहिए और दूसरी ओर वह संपूर्ण प्रकृति को शोभा संपन्न भी मानती हैं तथा प्रतीक योजना में भी सतर्क रही हैं। इसी प्रकार प्रकृति का पृष्ठभूमि के रूप में चित्रण हुआ है। इन पंक्तियों में पुनरक्ति प्रकाश रूपक और अनुप्रास अलंकारों की भी योजना हुई है। प्राकृतिक वैभव का वर्णन करते हुए करने के पश्चात कवित्री अपनी हार्दिक व्यथा का प्रकृति के अंचल में अनुभव करते हुए कहती हैं कि तारे आंसुओं का रूप धारण करके उस कणों के रूप में फूलों के हृदय पर अपनी शैया बनाते हैं, अर्थात फूलों पर ओस कण का कोमल प्रसार होता है और वायु के प्रवाहित होने से बेंत के वनों में भी चंचलता सी आ गई है तथा उनमें से बिहाग का करुण राग निस्रित हो रहा है। कवित्री का कहना है कि उदास निद्रा घूम घूम कर स्वप्नों की राशि लेकर लौट रही है और देर तक नींद न आने पर पुनः चेतना स्वप्न जगत में खो गई है, अर्थात धरती पर निद्रा व्याकुल भाव से विचरण कर रही है, अतः प्राणियों पर उसका प्रभाव भी शिथिल हो गया है। कवित्री कह रही है कि जीवन ओस कणों से निर्मित हुआ अत्यंत क्षणभंगुर है और प्रेम इंद्रधनुष के समान आकर्षक पर शीघ्र ही मिट जाने वाला है तथा संसार काले घटाओं सा धुंधला और बादलों के सदृश सर्वदा नवीन करुणापूर्ण व पुलकित सा जान पड़ता है। कवित्री के कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बादलों में पुलक भाव और जल एक साथ व्याप्त रहता है, उसी प्रकार जीवन में पुलक व करुणा का साथ साथ समावेश रहता है। कविता में के अंत में कवित्री प्रिय को संबोधित कर रही हैं कि हे मेरे अतिथि, तुम बिजली बनकर मेरे नेत्रों में पांव रखते हुए आओ, अर्थात मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए पलक रूपी पावड़े बिछाए हुए हैं और तुम इन चरणों को रखते हुए आओ। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि इन पंक्तियों को ईश्वर के प्रति संबोधित भी कहा जा सकता है। श्रीमती महादेवी वर्मा की इस कविता में प्रकृति की रात्रिकालीन सुषमा का चित्रण करते हुए प्रातःकाल का सात्रिकट होना स्वीकार किया गया है और प्रकृति को चेतन का रूप प्रदान कर उसके विविध तत्वों को संकोच शील पुलकित नृत्य निरत एवं गीत गाते हुए आदि विभिन्न स्थितियों में अंकित किया गया है। इस प्रकार बहुविध भावों से प्रेरित होने के कारण प्रकृति चित्रण को विशेष गति प्राप्त हुई है। साथ ही कलात्मकता की वृद्धि हेतु अलंकार योजना पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है और अनुप्रास रूपक उपमा श्लेष एवं पुनरुक्ति प्रकाश नामक अलंकारों की सफल अभिव्यक्ति हुई है। रजनीश कुमारी यादव की आवाज में महादेवी वर्मा के अगली कविता का शीर्षक है जो चौथी है, तुम्हें बाध पाती सपने में। तुम्हें बाध पाती सपने में तो चिर जीवन प्यास बुझा लेती, उस छोटे क्षण अपने में पावश घन सी उमड़ बिखरती, शरद दिशा सी नीरव घिरती, धो लेती जग का विषाद, ढुलते लघु आंसू कण अपने में मधुर राग बन विश्व सुलाती, सौरव बन कण कण बस जाती, भरती मैं संस्कृति का क्रंदन, हंस जर्जर जीवन अपने में, सबकी सीमा बन सागर सी हो असीम आलोक लहर सी, तारों में आकाश छिपा रखती चंचल तारक अपने में, सांप मुझे बन जाता वर्षा, पतझर मधु का मांस अजर सा, रचती कितने स्वर्ग एक लघु प्राणों के अस्पंदन अपने में, सांसें कहती अमर कहानी, पल पल बनता अमिट निशानी, प्रिय मैं लेती बाध मुक्ति, सौ सौ लघुपत बंधन अपने में, तुम्हें बाध पाती सपने में। प्रस्तुत कविता में श्रीमती महादेवी वर्मा ने हृदय की विविध मधुर इच्छाओं का प्रतिपादन करते हुए प्रिय मिलन संबंधी जिज्ञासा और स्वप्न मिलन की संभावना व्यक्त की है। कवित्री अपनी मानसिक विकलता का वर्णन करते हुए अपने प्रिय से कह रही हैं कि यदि मैं तुम्हें अपने स्वप्न के बंधन में ही बांध सकने में सफल हो पाती, अर्थात स्वप्न में ही तुम्हारे दर्शन कर पाती, तो अपने हृदय में अनादिकाल से पलती हुई प्यास की स्वप्न के सीमित क्षण में ही मिटा लेती। रहस्यवादी दृष्टि से इन पंक्तियों में कवित्री ने यहाँ स्पष्ट करना चाहा है कि साधिका सीमित स्वप्न मिलन से ही संतुष्ट हो जाएगी। कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु में घटाएं उमड़ती हैं और फिर तुरंत ही बरस कर आकाश में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार मैं भी उस स्वप्न मिलन सुख से प्रसन्न हो संपूर्ण संसार को सुख प्रदान करती हूँ तथा शरदकालीन रात्रि का सा आचरण करती हुई अपने स्वरूप का विस्तार करती हूँ। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार शरद ऋतु में चंद्रमा की कांति धरती के कण कण में व्याप्त रहती है, उसी प्रकार कवित्री भी सर्वत्र चंद्रमा की सी उज्ज्वलता और मधुरमा प्रसारित करती है। कवित्री का कहना है कि उस दिशा में मैं अपने अश्रुओं से संपूर्ण संसार का दुख मिटा देती। कवित्री ने अपने प्रिय से यह अभिलाषा व्यक्त की कि यदि मैं तुम्हारे दर्शन स्वप्न में कर पाती तो अपने हृदय में अनादिकाल से पलती हुई प्यास उस सीमित क्षण में मिटा लेती। इसी संदर्भ में कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार असीम होते हुए भी सीमा निर्देश का कार्य करती है, उसी प्रकार मैं भी अखिल विश्व को अपने में समेट लेती और प्रकाश के विशाल तरंग बनकर तारों भरे आकाश को अपने चंचल पुतलियों में छिपा लेती। इसका अर्थ यह है कि साधिका अपने सीमाबद्ध रूप को केवल प्रभु के स्वप्न मिलन के आधार पर ही असीमित रूप प्रदान करती है। कवित्री कह रही है कि आराध्य से मिलने के पश्चात सांप भी मेरे लिए वरदान सा सुखकर हो जाता है, अर्थात मेरे अभावों की समाप्ति हो जाती है। और जिस प्रकार पतझड़ के पश्चात बसंत ऋतु का आगमन होता है, उसी प्रकार अब मेरे लिए पतझड़ की खिन्नता भी बसंत का अक्षय आह्लाद बन जाती है। इस प्रकार प्रिय मिलन के पश्चात दुख व पीड़ा में मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी है और मैं अपने प्राणों की एक हलचल में अनेक स्वर्गों का निर्माण करती तथा मेरे प्रत्येक कार्य में स्वर्ग सा सुख बिखेर देने की शक्ति आ जाती है। इन पंक्तियों में कवित्री ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि प्रभु मिलन का वह समय चाहे कितना ही सीमित क्यों न होता हो, वह साधिका के लघु कण प्राणों में एक विशिष्ट स्पंदन की सृष्टि कर देता है और इस प्रकार वह साधिका अपने जीवन में सहज रूप से अनेक लोगों का आनंद प्राप्त कर लेती है। कविता के अंतिम अंश में कवित्री कहना चाहते हैं कि प्रेम मिलन के पश्चात मैं अपनी प्रत्येक सांस से अपने प्रेम की अमर कहानी गाया करती और मेरे जीवन में आने वाला प्रत्येक क्षण मेरे जीवन की अमिट निशानी बन जाता तथा मैं अपने इस छोटे से प्रेम बंधन में सैकड़ों बार मुक्तियों का सुख प्राप्त कर लेती। कवित्री ने यहाँ यह स्पष्ट करना चाहा है कि साधिका प्रभु के स्वप्न मिलन में ही सैकड़ों की मुक्ति के आनंद को बांध लेती है, अर्थात वह स्वप्न मिलन उसके लिए मोक्ष की सुखद स्थिति लाने वाला होता है। श्रीमती महादेवी वर्मा की तुम्हें बात पाती सपनों में नामक कविता की मुक्ति रहस्यवादी विचारधारा ही है और चूंकि रहस्यवादी साधक में साधना में साधक का चरम लक्ष्य मिलन सुख प्राप्त करना होता है, अतः इस कविता में कवित्री ने इस सुख को प्राप्त करने के लिए कल्पना के आधार पर स्वप्न मिलन तथा मन पर पड़ने वाले उस मिलन के प्रभावों का उल्लेख किया है। इस प्रकार कल्पना के आधार पर आत्मा की विविध इच्छाओं का मधुर प्रतिपादन करने के कारण संपूर्ण कविता में कल्पना का वैभव भी विद्यमान है और जीवात्मा को वर्षाकालीन बादलों शरद तत्कालीन रात्रि सुगंध आदि विविध रूपों में कार्य करते हुए देखने की कल्पना भी की गई है।